परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊख चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति जाए, ऐसे तेरी भक्ति नुकसान नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी। तय मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण है। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के सोने के मर्ग होया करें, कदे सारा सोने का मर्ग, तो वो माया वही मर्ग था उसका, रावण का मामा मारिच वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव यह है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं, मानती जिद्दी बहुत है यार, मैं जाता हूं तू आइये मत ना। नो बोला मैं आऊं तक होनी, पर या मुझे आदेश देगी तो मैं क्या करूं, तू यू करिए इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल के और एक रेखा खींचाइए, पहले तो ये कोशिश करिए ना आना, यहां जंगल का काम है, सब समस्या हो जाती। ऐसा ही हुआ, फिर कहने का भाव ये कि लक्ष्मण ने भी जाना पड़ गया उसी के कुबोल बोलन ते। सीता ने बोली तू तेरा भाई मर गया, किसी ने वो ऊपर आवाज लगा रहा है हे राम आए मर गया, और तू जाना नहीं चाहता, तेरी नीयत में फर्क से है, तू नहीं जाना चाहता, तेरी नीयत में गड़बड़ है, यहां तक बोल दिया सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ वो मंत्र बोल के और एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इसे बाहर मत जाना। अब उधर से रावण एक साधु का भेष बनाकर आ गया और कहा माई भिक्षा देना। सीता जी ने कहा आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ अंदर आके, यहां चले जाओ। रावण जब निकट आया तो देखा वहां तो रेखा के अंदर से इतनी गजब की लपट निकली, वो 10 कदम पीछे भाग गया, नजर फूक देता उसको। तो रावण कहने लगा माई तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, तुमने यहां पर ये अग्नि रेखा खींच रखी है, आप बाहर आके दे दो, भिक्षा देनी है तो नहीं तो तुझे ये श्राप दे दूंगा, नू दे दूंगा। अब सीता जी ने सोचा कि बिजली बड़े साधु संत है और ये आटा दे के फट दे वापिस आ जाऊंगी। अब उठाया वो तो भिक्षा डालनी थी, वो उठाकर बाहर गई, रेखा से बाहर चली गई। रावण ने तो पकड़ कर बाजू गेर ली कंधे पे और वहां ठोकी ठाक है नौलखे बाग में। अब उसकी तो जरा सी लगी, वो बोली बूझते नहीं कह गए तो बाहर मत निकलिए, वो मेंटल थोड़े ही थे। तो हम परमात्मा कहते हैं जैसे सीता ने लापरवाही करी थी, वचन नहीं माने उनके, कितनी दुरुक्ति अपनी भी करवा ली और गेला उनकी करवा दी। तो पुण्यात्माओं ये वचन जो सतगुरु के जो मर्यादा के हैं, ये लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना भाई। यदि आपने इस भक्ति में सफल होना, नहीं तो बड़का खेलनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की नरेल बना रखी काल ने, आपकी तो औकात क्या है, ये छोटे मोटे ऋषि मैं ऋषि बने, फिर इनकी सबकी दुरुक्ति कर रखी है, जितने भी ऋषि मैं ऋषि थे। जैसे विश्वामित्र पहले राजा था, घर त्याग का बाल बच्चेदार था, घर त्याग के वैसी प्रेरणा हुई जंगल में जा बैठा, खूब भक्ति करो और थोड़ा आहार करे, उधर से काल ने भेज दिए एक अप्सरा, वहां फिर शादी कर बैठा, 6 महीने की लड़की होगी जब गेर के वहां चल पड़ी, ऋषि जी सावधानी, बस ईसाई ऋषि था तू आया था घर छोड़ कर, पकड़ तेरी लड़की ने गेर कर जाती रही। फिर वो कन्वर्सी को देख आया तो फिर जंगल में चला गया। तो पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहां संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी। जैसे बालक छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हो और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई ज्वाइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ती मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है तो उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर तुर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसके उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा, आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है, तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, खत्म करना है, जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया, ऐसा दास ने काफी केस देखे हैं इस भक्ति मार्ग के लाइफ में। तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीर पंडित छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक, हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं, लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहां भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, मालिसी चे सौगड़ारी तुम्हें फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा। आज मैं दिखा दूं आपने, कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते हैं, एक तक है मेरा बेटा दारू पी हुआ है, कोई नो कह नो दुखी कर रहा है, कोई ऐसा कर्म कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कह मन पीटे है, एक तो बुढ़ा रो खड़ा खड़ा न बोला घर ना जाऊं वहां क्यों छोरा मारे है, अरे तेरा गज भैया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा, ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधु के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे, उन बालक ना हो थे, वो वैसे ही गर्भ खराब हो जाता, और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया, नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधु का एक दो बालक खराब हो गया, तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी, फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने, उसकी माँ उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही लेकिन उस पुत्र वधु का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, दो गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई राजा की, हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी का और वो तीसरा भी खराब हो गया, तो टक्कर मारे रोवर बेगन कर दिया उन्हें, उनकी मां भी आ गई यानी उसकी पियर था मायके था, और पूरा हो गया भी बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी, और या तो घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे हैं, आंख सोजा ली, के फायदा हुआ, गुरु जी कहे नो कर दिया, नो कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फोन किया, मैं परसों, उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया, जब हम ऐसे थोड़ी सी संगति घर घर जाया करते थे, उसे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन चौथे दिन तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा उसने सोचा उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गया सो गया, डॉक्टर नहीं दिखा लिया। मुझ दास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तुम मान्या करो, कुछ विश्वास करा करो। पहले संगत थोड़ी थी तो यहां आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो, तो वहां उस समय ऐसा नहीं था, तो ज्यादा ही दुखी सी हो रही थी मां भी, भगवान जो करे ठीक करा करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था पर वह बालक थी, तो डॉक्टर नहीं गए तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन तीसरे दिन कहती कौन कहे बाल खराब हो गया, बाल तो न्यू का न्यू है, एज इट इज गर्व इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का, फिर तीस चौथे दिन हमारी रोटी कमे खाने को बुलाया रहे, बड़ी खुशी खुशी फूली फूली, फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया, मैं तो कदी पक्की जचगी मेरा भगवान पूर्ण है कबीर जी, मां ठीक बेटा हम ये चाहवा थे थारा विश्वास बने। अब तीन उनका चाह था ना बेटे का, तीन महीना पाछे फिर चेक करा लिया छोरी पाई, फिर रोए भाई मत इसने गर्भपात कराऊंगी न्यो कराऊंगी, लेकिन उनको हमने बता ज्ञान से प्रीति थी उसकी सास ने बोली खबरदार जैसा पाप कराया है तर, अपुण्य आत्माओं वो, फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, दातु विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी बुंडी आदत से, जैसे ऊंट होता ना ऊंट, ऊंट पे सामान धरे कोई सामान लग जा करे ना, जब अरतारे जब भी आ, यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रोए, और तारा जब भी आ करे हो यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को फिर भी आ, तो हमारी इसी आदत बन गई ऊंट के सी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने केला गए एक सेकंड में के कर दे, उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी ग्रुप में, और इसने हा हाकार मचाई तो ले फिर ले ले बेटी, वह लड़की दे दी, और फिर नोट रो आए मत इसने गर्भपात कराऊंगी मारूंगी और नीच कहेंगी। तो कहने का भाव यह है कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, वजन कम करता है जब भी रोए ऊंट की तरह, और धरे जब भी रो तुम, तो इस तरह हमने राज्य रमता राम की, राज्य रमता राम की रजा धरे दो शीस, और दास गरीब दरस परस तीस बैठे जगदीश, मालिक की रजा महाराज जी रहे जो कर तू राख दाता। बालक से हमारी सोच तक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुंडे झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, कोई बालक का खेल है, तो इसको आप एक एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की हो सकता है। अब जो प्रश्न चल रहा था, इस सृष्टि में कोई जीव सुखी नहीं, परमात्मा ने बताया है कि उदय अस्त की बात करते हैं, मन सब का किया विवेका हो, जो पृथ्वीपति राजा होते थे उनका मन पता है, कोई तो सुखी नहीं, जिसका जितना बड़ा राज्य अक्षेत्र होगा उतना ही महादुखी होगा, सब सो चिंताएं कि अकाल पड़ गया, कि तो और पंगा पै रहा है, कि हाहाकार माच रही है, कि तो कोई धरने दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा जो सुख के नापने का पैमाना वो खराब है, गलत है। हम इसी सुख को सुख मान रहे हैं, घर में संपत्ति हो जा, संतान बढ़िया हो जा, संतान छोरा हो जा, लड़का लड़के को ज्यादा महत्व देते थे, अभी दे रहे हैं जान लोग, लेकिन या काल की भूल भुलैया है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा बेटा देते बेटी कि किसी प्रकार की रखे, रहर भक्ति करके यहां से पीछा छुटवा ले। क्या बताते हैं परमात्मा, सुखदेव ने चौरासी भुगती, बण्या पजावे खर वो तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़ वो। सुखदेव जी ने कहते 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया और गधे की योनि प्राप्त की, और आपकी क्या बुनियाद है, आप जी की क्या औकात है कि आप जो साधना कर रहे हो इससे कोई सुख प्राप्त कर लोगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर वो, तेरी क्या बुनियाद पुराणी तू पेंडा पंथ पकड़ वो। पेड़ा पंथ वो मार्ग ग्रहण कर, कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है, और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो दो अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीरपंथी बिना कबीरपंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट हैं, ये दिग भ्रष्ट हैं, इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है ये अलक में उतरती, कोई ना गले ना उतरती सबके, अरे या उतरे पार पड़ेगी, ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने, आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और यह खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ होगा। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले, यही ज्ञान वो पुरुष में देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कहते, इतना कह करके कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, और ये ब्राह्मण लोग ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, ये संस्कृत भाषा जानते हैं, और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण। तो इस बात दो परमात्मा अपने सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, सिंपल लैंग्वेज में, वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे, और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। अपने आत्माओं, मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। के आप जी के भाग्य में कोई दुख है, तीन ताप का दुख तो सबसे निम्न होता है, छोटा होता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कट सकता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में अर्जुन से ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे लाभ आने को छोड़कर तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। फिर तुरंत ही कह रहा है कि अर्जुन यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज का आनंद लेगा, तेरे दोनों हाथ में लड्डू। फिर क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई कटे हुए सिर कि व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मच रही है, भयंकर आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे कोई मार रहा है, काट रहा है, बहने जैसे अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे अन्याय, इतने मेरे पतियों का हमारे सुहाग उजाड़ दिए, तुझे क्या मिल गया ये ऐसा विनाश करके, अब तो चैन से राज कर रहा है। इस तरह की उसको ये भयंकर शौपन और भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगी, वह भूत दिखन लग गई युधिष्ठिर ने, कहने की बात से जिसे। उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधु घात किया है, जो पाप करे हैं, अपने रिश्तेदार मार दिए, भाई काट डाले, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, जो तीन ताप के अंदर दुख है, उसके लिए क्या बताया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें करोड़ों सभी पृथ्वी के तो पहले तकरीबन सभी भक्ति करा करते हैं, चाहे कोई किसी जाति मजहब से था, सभी भगवान की भक्ति करते थे। और पहले जैसे गांव में जिम जैसे किसी का शादी होती थी ना, और गांव में प्रत्येक घर में एक एक आदमी का न्योता दिया करते, कहा हमारा जिम बनाइयो, क्योंकि सभी पहले भक्ति करते थे, और वो भक्ति वाले व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का आहार करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है, भक्तों के अन्न खिलाने का वो यज्ञ होती थी, बेटी या बेटे के ब्याह में ऐसी इस प्रकार का हवन यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ करते थे, धार्मिक यज्ञ करते थे, हवन भी करते थे ऐसे। तो ऐसे ही उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी के सभी तक आदमियान बुला ले उस यज्ञ में, और सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को बुला ले, और सब भोजन खाएंगे। भोजन खाने के बाद एक अलग स्थान पर रखा हुआ एक पांच मुंह का पांचमुखी एक शंख आवाज करेगा, बगैर किसी बजाए अपने आप बज जाएगा ऑटोमेटिकली, और यदि उसने आवाज कर दी तो तुम्हारी यज्ञ सफल होगी, सफल होगी तुम्हारे ये तीन ताप कटेंगे, भूत दिखने बंद होंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया गया। अब उसमें अर्जुन के दिल में खटका तो लग गया कि जब तक ये भगवान मुके था कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले, अरे ये नौके है तेने, तुमने जो भाई मारे थे, रिश्तेदार मारे, सैनिक मारे, वो पाप दुखी कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ करो। अब उस समय तक अर्जुन नहीं बोलिया कि यदि मैं वाद विवाद करूंगा तो भाई नो सोचेगा कि ये पैसे ला कर राजी को ना, ये मेरे ट्रीटमेंट पे जो इतना करोड़ों रुपया लगेगा, लाखों, ये लगाना नहीं चाहते ये तो, इसलिए बाद विवाद शुरू कर दी। और अर्जुन को पता था मेरा भाई फिर इलाज नहीं कराओगा, सारी उम्र ऐसे दुखी रह जाएगा। अर्जुन नहीं बोलिया उसमें, हाँ स्वीकृति दे दी, स्थान निहित कर दिया, जन निश्चित कर दिया गया, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव कृष्ण जी के जो वंशज थे, और बाकी अनाथ जीवकरण कितने भोजन करने आ गए, 9,84 सिद्ध ये सब आ गए, लेकिन सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बाजा, आवाज नहीं करी शंख ने। कहने का भाव ये है कि वो यज्ञ सफल नहीं हुई, उनके तीन ताप नाश नहीं हुए। तब पूर्ण परमात्मा द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी जैसे अपने विधि अनुसार अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रकट थे, एक कमल के फूल पर परमात्मा ऐसे विराजमान आकर होते हैं, और वहां से एक वाल्मीकि परिवार निसंतान था वो उठा लाए थे, और उधर से उसका एक साथी था सुदर्शन नाम का, एक परमात्मा का एक भक्त बन गया था सुदर्शन नाम का वाल्मीक। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर जी का जो शिष्य वाल्मीक था सुदर्शन, सुदर्शन उसका नाम था, सुपत इसलिए कहा करते जैसे शेड्यूल कास्ट ने सुपच बोल देते, और वास्तव में जाति वाल्मीकि थी। तो बाल्मीक जाति में जन्म उस सुदर्शन जी का, परमेश्वर कबीर जी भी उसी जाति से संबंधित थे, क्योंकि वो जैसे अब्दुल्हा कहायत कहलाए थे तो उसमें द्वापर युग में बाल्मीक कहलाते थे। ऐसे ही लीला करते हैं दाता, किसी का जो भी ना दत्तय भगवान आ रहे हैं और उस वही साथ वही परमात्मा को पा सकते हैं जो जाति और मजहब और इन बकवादा ने छोड़ के केवल राम परमात्मा न सावेंगे। तो ऐसा ही सुदर्शन जी परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी से जी को वहां बुलाया गया और फिर सुदर्शन जी ने जब आहार किया तो वो शंख बजा, यानी वो यज्ञ सफल हुई। अपने आत्माओं, हम पहले सुना करते थे कि सुदर्शन सुपर सुदर्शन जी के ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी तो क्या कहते थे कि श्री कृष्ण जी का पक्का भगत था वो। अरे श्री कृष्ण जी ने रोटी खा ली, भगत की तरह गया। फिर जब श्री कृष्ण जी ने खाना खा लिया, शंख नहीं बाजा है और सारे सब ने तीन लोग के देवता भी आ रहे थे, उनने भोजन खा लिया जब भी शंख ना बजा। कृष्ण जी के बाकी कौन से कच्चे भगत थे, कृष्ण जी ने खा लिया, भगत गिनती की तरह गई। फिर उसके आगे तो अब ये ज्ञान नहीं था हमारे को, अब पता चला वो के सांग था, वो तो भगवान न्यारा, उसकी लीला न्यारी, उसकी शक्ति न्यारी, कर्म दंड यानी तीन ताप को भी वो कभी परमात्मा ही काट सकता है। वास्तव में क्या हुआ था कि कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने भगत का रूप धारण करके सुदर्शन जी का वहां यज्ञ में आए थे और भोजन पाया था, फिर वो शंख ने डूंडा उठाया था, यानी वो तीन ताप का जो कष्ट था, युधिष्ठिर को जो भूत दिखे थे, प्रेतात्मा सतावे थी, वो भी कबीर परमात्मा से समाप्त हुए, ना ब्रह्मा से वे, ना विष्णु से, ना शिव से, ना कृष्ण जी से। तो यहां कहते तुम कौन राम का जब तेजापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों ताप। एक समय एक काशी में एक दामोदर नाम का एक बिजनेसमैन था। दामोदर नाम का एक सेठ था और वो भगवान का बहुत ज्यादा भक्त था, श्रद्धालु था। सभी देवी देवताओं की, जैसे हम हिंदू थे, हिंदू हैं और जिस प्रकार हम हिंदू धर्म होने के नाते दंत कथा लोक वेद के आधार से जो पूजाएं करते थे, वो सभी देवी देवता जो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, शंकर भगवान, देवी, इन सब की मूर्तियां आदि रख के अपनी जहाज में, उसका एक जहाज चलता था। पहले इन दरियाओं के अंदर भी जहाज के माध्यम से व्यापार किए जाते थे, तो ऐसे समुद्र में भी, समुद्र जैसे दरिया समुद्र में गई, समुद्र के साथ साथ फिर दूसरी दरिया को पकड़कर वो दूसरे जगह जाते थे, ऐसे समुद्र को भी कुछ क्षेत्र में पार करते थे। एक दिन परमात्मा ने, परमात्मा कबीर जी सत्संग कर रहे थे, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, तो वहां उस सेठ दामोदर जी का घर था आसपास में थोड़ी सी दूरी पे। तो जिसके सत्संग परमात्मा ने करना था, उस बहन ने उस दामोदर सेठ की धर्मपत्नी को, उस धर्मवती को, धर्मवती नाम था उसका, धर्मवती को भी आमंत्रित कर दिया कि हमारे घर आइए, हमारे गुरुजी आएंगे, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो वो लड़की ने, वो बहन थी जो धर्मवती, दामोदर सेठ की पत्नी, वह सत्संग सुनने चली गई। और सत्संग सुनने चली गई तो वहां परमात्मा ने ज्ञान दिया। अपने आत्माओं, आपको उदाहरण दिया कई बार कि एक घर में एक सदस्य नाम ले रहे है, दो ना ले रहे, एक घर में दो सदस्य नाम ले रहे हैं, तीन नहीं ले रहे, एक घर में तीन सदस्य नाम ले रखा, एक नहीं लेता इस दास से। तो ये के कारण है कि वो परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कोयल होती है, कोयल और कोयल अपने अलग से घोंसला बनाकर बच्चे पैदा नहीं करती, अंडे नहीं देती, क्योंकि ये काग नहीं छोड़ते, उसने खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कोयल, जब वो ये देखती है कि जिस किसी मादा कौवे ने, कौवी ने समझ ले, अंडे उत्पन्न कर रखे हों और वह कहीं इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाती है आहार करने के लिए, तो पीछे से उसके घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है कोयल। अब जो कौवी वापस आती है, मादा कौवा, तो वो देखती है कि चार अंडे हो गए। अब वो पहचान पाती नहीं मेरा कौन सा है, नहीं तो वह गिर दे नीचे ठा के या खा ले उन्हें, तो उसका इन डर रह के दे तेरे इन तेरा अपना ना खराब हो जा। तो उन सब के सब को वो परिवर्श कर देती है, सब के सब का वो उनको से देती है, बच्चे बना देती है। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वह मादा कोयल जिसने अपने अंडे उस घोंसले में छोड़े हुए हैं उसके पहचान बना आते कौन से तेरे हैं, एक सा रंग होता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे फिर उड़ने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं, थोड़ी देर गए उड़ के फिर वापस आ गए, फिर उड़ कर गए फिर वापस आ गए। तो वह देखती रहती है कि अब ये पूरे परफेक्ट हो गए बच्चे चारों। तो वह फिर दूर बैठ के अपने बच्चों को कैसे लेती है अपने पास, कैसे बुलाती है, दूर बैठ के आवाज लगाती है कुहू कुहू की। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं ना वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनका तो अटैक करती है वो वाणी आवाज, तो तुरंत उड़कर अपनी मां की आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। अब वो मादा कवि कुछ दूर तक उनके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए गए, फिर वह कोयल फिर और आगे चली जाती है, वहां जाकर कुहू कुहू करने लग जाती है। तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं तो वो कवि वापस आ जाती है, कहीं तेरे वो दूसरे बच्चों का कोई कोई हानि ना कर दे, उनको छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, वो काग आड़िया कहता असर नहीं, वो काग वाले बच्चा कहते असर नहीं असुवाणी का, और कोयल वाला का हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी अपनी पुण्यात्माओं को ऐसे ही जगह पर जन्म देता है, और जब वो थोड़े से समझण जोगे हो जाए ना फिर अपनी वाणी बोलते हैं। दास ने गांव गांव में नगर नगर में जाकर या कोयल की वाणी बोली, परमेश्वर की वाणी का वहां प्रचार किया, जो कोयल के बच्चे थे बस उसी समय गेर लाग लिए, आज तक अटल हैं। और उसी घर के मनमान ने दो सदस्य ना लाग रहे, वही बीबी उनका दिमाग चट है बकवाद करे, क्योंकि वो काग के थे, वो काल के हैं, और जो परमात्मा के बच्चे थे वो आज देख लो यहां रंग लाग गया। तो परमेश्वर कहते हैं सटदल दोनों दीन का दिल में दोष ना धार, सतगुरु का कोई एक है यु काल का सब संसार। काल ने तो अपने आहार के लिए बच्चे पैदा करवा रखे हैं, जैसे गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि तीनों गुणों के भाव से जो कुछ भी उत्पन्न जो कुछ भी हो रहा उसका मुख्य कारण मैं हूं, उसका निमित्त मैं हूं, वो मुझसे ही हो रहे ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति ये काल के लिए, सतगुण विष्णु से हमारे एक दूसरे मोह ममता की सती थी ये भी काल के लिए यहां रोके रखे, और भगवान तमगुण शिवजी से हमारा सहार करवा देना ये भी काल के लिए। तो कहते हैं जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए उनका असर हो नहीं सकता, वो काल के जाल में रह नहीं सकते, उन पर काग का यानी काल का असर नहीं हो सकता। तो एक का सत्संग सुनाया था उस बेटी ने, दामोदर की पत्नी ने, धर्मवती ने सत्संग सुना, परमात्मा ने विचार व्यक्त किए थे, और वो ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी शंकर की कति कट्टर पुजारी थे वह सेठ जी। परमात्मा ने उस दिन सत्संग सुनाया और कहा भाई दो दिन की गुजरान जगत में है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, संपत्ति है, सेठ है, कल को पैसा हमारी मृत्यु हो जा के साथ चलेगा। तो इस प्रकार के काफी उदाहरण दिए परमात्मा ने उस बेटी के दी सास। और फिर ये कहा भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। अब वह बेटी नाम तो किसी गुरु को तो बना नहीं रखा था, लेकिन साधना बहुत करती थी। फिर उसको पता चला गुरु बिना तो सारी व्यर्थ है। परमात्मा कबीर जी ने समझाया था कि राम कृष्ण से कौन उबड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वह धनी गुरु अज्ञाधीन। कहते राम कृष्ण को तो आप बड़ा मानते हो, यहां का सुप्रीम मान रहे हो तुम, तुम्हारी अपनी सोच से, और उन्होंने भी गुरु बनाए। वशिष्ठ मुनि को श्री रामचंद्र जी ने गुरु बनाया, और दुर्वासा जी को श्री कृष्ण जी ने गुरु बनाया। संदीपनी जो थे श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान के गुरु थे, जैसे टीचर होया करें। आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु दुर्वासा जी थे। तो उस बेटी का समझ में आ गया भाई सचमुच गुरु तो बनाना चाहिए। अब उसके सामने एक समस्या आ गई बेटी का, उस धर्मवती का। उसने अपनी सहेली से कहा बहन मैं तो नाम लूंगी, मैं तो नाम लेना चाहती हूं, कल न जीवन मेरा जीवन मृत्यु होगी तो जीवन नहीं रहा था, क्या करूंगी मैं। और परमात्मा कहते थे कि मेरी शरण में आने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी वह भी नहीं होगी, यह गारंटी देता हूं। अब उस बेटी के इस बात का भी डर हो गया, क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है ना इस जीवन का, मनुष्य के मनुष्य जन्म के महत्व से जब परिचित हो जाता है, एक एक पल भारी हो जाए अच्छी आत्मा को, हे भगवान कहते मृत्यु हो जाए कल में, और नाम बिना रह जाऊं मैं। उसने अपनी सहेली से जो उसके जिसके घर में सत्संग हो रहा था उससे कहा बहन मैं नाम लूंगी। वह बोली आजा गुरु जी के पास चल नाम ले ले। मेरे सामने एक समस्या आ गई, क्या कि मैं कोई भी कार्य अपने पति से के पीछे से नहीं करती, उसकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करती, और मैं असमंजस में फंस गई बहन के नाम में लेना चाहूं, मेरी तो रात भी ना कटे कल दिन भी पूरा ना हो मेरे पे, अब इसका समाधान कैसे हो, और पति की आज्ञा मैंने मिली नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा समस्या आवे मेरे को। कहने लगी इसका समाधान था फिर गुरु जी बताओगे, चल उनके पास चलते हैं प्रार्थना करें। उसने सारी कहानी बता दी। परमात्मा ने कहा बेटा ना तो तेरे पति के साथ तेरा जन्म होया, और ना ही तेरे तू गेल मरेगी, अपने पति की प्रत्येक बात का तू पालन कर, लेकिन अपने जीवन के फैसले में सौदे में किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, अपने जो भक्तिहीन प्राणी थे अपने जीवन की तू खुद जिम्मेवार है, और अपना नाम ले बेटा, कल किसने के बेरा कल मृत्यु होगी, तेरा पति कुंड तेरा गेल मरेगा। तन्यु बोलिए भगवान नाम तो मैं लेऊंगी, और यह इज्जत भी आप रखियो, रोज प्रार्थना करती मन मन में परमात्मा मेरे पति की बुद्धि बदलियो, कदे मेरे तो नाराज हो जावे। नाम लेकी भक्ति शुरू कर दी। सेठ जी आ गए अपने व्यापार पर से वापस, तो उसने और उस दिन भी सत्संग दे खेल मालिक का, उस दिन भी सत्संग मालिक नजर रखा, कहते सोशल छिद्र मैं करूंगा अपने जन के काज, वहीं थोड़ी सी दूरी पर सत्संग था, उधर से सेठ जी आ गया। अब सेठ जी का को खाना खिलाया, नुहाया, स्नान के लिए पानी दिया, काफी समय लग गया। उसकी साथ की सहेली आई, उनसे उसने कह दिया कि बहन बाहर आकर बता दे, तुम बोलियो ना सेठ जी आ रहे हैं, मेरा दाव लग गया तो मैं आऊंगी, तुम जाओ। वो सारी निकाल दी सर। अब वो खाना खाने लग गया जब सेठ जी, तब उसकी पत्नी धर्मवती कहने लगी अगजी मेरे तो गलती होगी आज, माफ कर दोगे। अब सेठ जी बड़ा धार्मिक विचारों का आदमी था, कहने लगा मेरी पत्नी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती जो अक्षमा योग्य ना हो, अकना जी एक भूल बढ़ गई मेरे पे, मैंने अंदर तेन प्रार्थना करी है भगवान इज्जत रखिए, इसकी बुद्धि बदलिए गुरुदेव। कहने लगी जी सच्ची बता दो, कहा सच्ची बता कि या पड़ोस में ना उनका सत्संग हुआ था, उनके गुरुजी आ रहे थे, बड़ी कमल बढ़िया बढ़िया बात बताई। और गुरुजी ने कहे थे गुरु बिना मोक्ष ना हुए, और के मेरा जीवन काल किसका है कि ना है, और मैंने आपके आज्ञा बिना ये गलती कर दी, गुरुजी का नाम ले लिया, अपना रास्ते नहीं हो गए। अब वो धार्मिक आदमी होते हैं और फिर परमात्मा रजा बख्शते अपने बच्चे पे, उसके मन में जरा सा मलाल नहीं आने दिया और कहा कोई बात ना भक्त, बहुत अच्छी बात, भगवान का नाम मत लिया है, इसमें बुरी क्या कर दी तने, इसमें क्या गलती कर दी, और क्या पूछना है, तो अच्छी बात का के सलाह लेनी थी, बहुत अच्छा किया। और ये तो सब कहे हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन भक्ति मोक्ष नहीं होता, अच्छा किया। अब उसने सोचा या बला था टड़ी भाई, चलो कोई नहीं नाराजगी व्यक्त करी से। फिर सोचा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक बार ये सत्संग में चल पड़ेगा मेरे साथ और वहां के माहौल ने देख लेगा, तो फिर इसने कोई कुछ भी कहता रही हो ये मन ने कोई ना किसी की, और ये संसार ऐसा निकम्मा है, कोई ना कोई निकम्मा आदमी इसने कह देगा तेरी पत्नी रात ने भी जा है और वहां ऐसे गुंडे है फलान है, या तो बिगड़गी। तो उसने सोचा इसका ये समस्या हल हो जाए, मेरी गेल एक बार चल पड़े उस सत्संग में, नाम तल्यो से नालो पर वहां का माहौल देखा हो एक बार। तो उसने कहा जी आज गुरु जी का सत्संग है और गुरु जी का संदेश आया था बेटी सत्संग में आइए, तो और मेरी सहेली सारी चली गई, मैं आपके आने से लेट होगी, आप मेरे साथ चलोगे सत्संग में। अब वो कहने लगे धर्मवती चलता मैं पढ़ूंगा, और मैं थक्या आ रहा रास्ते में, काफी लंबा सफर करके आया हूं, मैं जाते मेरी लटके आवेंगे, मेरा के सत्संग में जाना ना, आप चली जाओ अपनी कोई सहेली न ले जाओ। ने बोले जी सारी जा दी आपने वो करियो, पाछे न बैठ जियो, नींद आवे तो लौट जियो, कोई ना नाटे। अब उसको पता था कि इतना भगवान आत्मा है, यू चला गया तो सो लिया, फिर तो ऐसा सत्संग करते हैं गुरुदेव, नींद तो सब सब को चली जाएगी इसकी। तो उसने सोचा रहा दुखी होगी, कोई बात ना ले चल पड़ता, अच्छा जी मैं चलता हूं तेरे साथ। अब वहां परमात्मा ने सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग के अंदर बताया गया भाई परमात्मा ने कहा ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे के साथ आव जात है काया देश राही। बहुत से लंबे लंबे मालिक ने विचार दिए कहने, और उस लाला जी की नींद आराम होगी और इतना गजब हुई हो। फिर उसके मन में यह शंका थी कि मैं पूजा तो करता हूं विष्णु जी की, और भगवान विष्णु का तो मैं पुजारी हूं, तो परमात्मा ने उसके मन की बात समझकर जो आंट लाग रही थी वो एक प्रश्न हल कर दिया। कहने लगे भाई कुछ भक्त प्रसन्न करते हैं, परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि ऐसे ऐसे हम वहां से आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ऐसे हुई है, और ये तीन लोक के भगवान हैं, ये क्रम में जैसा क्रम करोगे वैसा ही फल देते हैं, क्योंकि उस समय परमात्मा ऐसा मोटा मोटा सा ज्ञान दिया करते थे ऐसे स्थान पर कि भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे, आपके भाग्य में कोई आपत्ति हती है टाल नहीं सकते, वैसा ही देना पड़ेगा, वैसा ही ये भोगते हैं, स्वयं भी भोगते हैं। प्रमाण दिए जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दे दिया था नारद जी ने, मैं पत्नी के भोग में दुखी हूं, तू भी सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। तो काफी उदाहरण दिए, लाला जी का सारे फिट हो गए, भाई बात तो सच है। तो कई भक्त परमात्मा कहते हैं, कई भक्त ये प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी ने तामर ध्वज को, मोर ध्वज के बेटे तामर ध्वज को आर्य से चरवा के जीवित कर दिया था, तो क्या ये भगवान नहीं थे? कबीर जी कहते थे पूर्ण परमात्मा और है भाई, मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं, अपनी ही डबल रोल करते थे। और कभी कभी कह देते थे हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक दिनी हमरा नाम कबीर। कहते भाई, और फिर परमात्मा ने फिर कहा कि हम उनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? वो नहीं कर सके जबकि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारे गए थे, इकलौता पुत्र था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रोए थे, पांचों पांडव हाहाकार मच के उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण जी वहां ठीक नहीं कर सके। उसको जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज की आयु शेष थी। उसको तो एक जाकर के बीच में उसकी कटवा करके जीवित कर दिया। इतनी इनके अंदर पावर है लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते। कर्म के दंड को टाल नहीं सकते और अभिमन्यु का की आयु शेष नहीं थी। अब यह बात खटकी और कहते हैं कोयल के बच्चे और काग के इतना अंतर हो से एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय अपनी पत्नी से कहने लगा भगवान मैं तो नाम लूंगा। तो वो कहने लगी जी गुरु जी से मैं बात कर लेती हूं और ले लो नाम बड़ी अच्छी बात। तो परमात्मा के पास वो लड़की गई कि ऐसे ऐसे आपका भगत आया था जी और मैं ले आई थी तो बड़ो बुला के और आपने बड़ी दया करी आपकी कृपा से इसके मन में कोई दोष नहीं आया मैंने इसे स्पष्ट बता दिया। तो ये कहने लगा बहुत अच्छा किया तेरा नाम ले लिया तो बहुत अच्छी बात परमात्मा आपने ही इसकी बुद्धि बदली है और अब ये नाम लेने की कह रहे हैं। परमात्मा बोले बुला बेटी बुला लिया। हाँ भाई सेठ जी नाम लेगा कहा जी उपदेश लूंगा। बात सुन ले भाई गुरु जी की भक्ति करने करे ना जब और देवता की पूजा ना चलती वह सारी घरते सारी मूर्ति उठानी पड़ेंगी जहां तू पूजा करता है। अन्य देवता की पूजा नहीं करनी केवल एक परमात्मा की भक्ति बताऊंगा वो साधना कर और गुरु जी के अतिरिक्त किसी अस्थात्री होनी नहीं चाहिए। तो सेठ जी ने बोला जी मैं सौदा करना जानता हूं व्यापारी हूं मैंने खूब समझ लिया ज्ञान आपका एक नंबर का ज्ञान आपका और मैं भी व्यापारी हूं सौदागर हूं कच्चा काम नहीं करता मैं आज के बाद आपके अतिरिक्त दास किसी ने नहीं पूजेगा मेरा नाम दे दो। परमात्मा ने कहा था नहीं होता तुम लाला जी हो बना ठेके चारों तरफ हाथ मारा करो कदे फिर गड़बड़ कर दे काम ने अक नहीं बिल्कुल नहीं होगी आपका दास आपका प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। अब उसके कुछ लेकर नाम चला गया और समुद्र के अंदर जहाज लेकर चल पड़ा। वहां उसने एक कक्ष बना रखा था जहां पूजा करता था सभी देवताओं की मूर्तियां तो भर रखा था वो कमरा ठाडा फुल चारों तरफ चमका रखी थी ब्रह्मा विष्णु जी की शिव जी की रामचंद्र जी की देवी की भैरव भूत सब की ला रहा था। जाके सबसे पहले वो सारी मूर्ति जल प्रवाह कर दी। एक कबीर जी का हाथ से बना हुआ चित्र वहां मिलता था बना देते थे पहले बहुत अच्छे चित्रकार होते थे वो मिलता था वो ले गया। सारा कमरा खाली करके एक मालिक का लाकर चित्र और जो मंत्रदाता ने दिए थे ये शुरू कर दिए भक्ति करे आरती करे उनकी वाणी की जैसे बता रखे थे। अब दूसरे दो सेठ थे वो कहने लगे रहा के हो गया तो मेंटल हो गया क्या सेठ जी इतने सारे ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी सारे की मूर्ति तारे के हटा दी और एक ये कौन है वो भी जानते थे कि ये कबीर जुल्हा अरे ये दान की पूजा करने लग गए तुम भगवान छोड़ दिया हनुमान छोड़ दिया है श्री कृष्ण छोड़ा तेने तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी तेरा नाश होगा। तो वो कहने लगे भाई अब मेरे बीच में मत आओ तुम आप अपनी भक्ति करो मैं अपनी करो तुम मैं अपने जीवन का मैं खुद जिम्मेवार हूं तुमने भाई इसमें सलाह देने की जरूरत को ना। अब उसकी हंसी कल लागे आ गया कबीर आजा कबीर बोला वो अपना के बोला उन्हें 10-15 नालायक वो चलता रहा वापस आ रहे थे सौदा भरकर बिजनेस करके कोई सामान ले रहे थे उनके बच्चे भी साथ थे क्योंकि दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे कई बार दूसरे लंबे टापू पर जाने के लिए। तो आते समय उनका सामान साथ में दो चार के बच्चे भी साथ में क्या हुआ समुद्री तूफान आ गया। समुद्री तूफान आ गया काफी दूरी से और देखा तो वही समुद्री तूफान कैसा होता जैसे आंधी उठकर चल पड़े धूल इस प्रकार पानी उठकर चल पड़ता 30-40 फुट ऊंचे तक से और पूरी सपीडता आता है। अब उनको जहाज चालक को पता होता है कि बात बिगड़न वाली होगी, उसने अलर्ट कर दिए कि वो समुद्री तूफान आ गया है और इतना तेज तूफान है शायद ही हम बच पाएंगे। एकदम सबकी हाहाकार मच गई। आप अपने देवता ने याद करें, लेकिन वो काफी दूर से आता हुआ तूफान बढ़ता ही नजर आ रहा है। और परमात्मा वो कबीर जी का शिष्य जो थे दामोदर जी आराम से बैठे। अब परमात्मा जो करेगा वो गलत कर ही नहीं सकता, परमात्मा गलत कर ही नहीं सकते। तो वो दूसरे सेठ के लगे रहे, लाला जी सेठ जी स्वाम दामोदर है, तूफान आ गया और सारे मरांगे, सारे रोवा बुरी तरह। भाई तेरा क्या हो रहा, तू कभी डरता नहीं है? न बोला भाई डरूंगा जब भी मरूंगा, ना डरेंगे तो अभी तारा तो है ही नहीं, भगवान ने इतनी लिख रखी होगी अपनी और क्या। कहने लगे रहे तो भी अर्ज कर ले अपने गुरु जी ते। अब वो कहने लगा सेठ जी के भाई तेरे हनुमान जी गदा ले रे, श्री कृष्ण जी सुदर्शन श्री राम जी तीर, और भाई और भी तुम बड़े बड़े देवता मानते हो और मेरा तो गरीब सा दुल्हा है, मेरा तो गुरु जी भगवान सब कुछ यही है, फिर यू ये क्या कर पाओगे जब तुम्हारे ये नहीं कर पा रहे? तो आज आई रही होगी अपनी मृत्यु। तो सेठ वो दूसरे थे वो कहने लगे लाला जी अब मजाक ना करें, कति नाश हो गया और मर गए था तुमको अर्ज कर ले। बोला बस तुम बैठ जाओ, थारी अर्ज फेल होली कति होली मारी था, तो बैठ जाओ सारे। अब बैठा क्यों करे नू के बैठा जा सह। तो खड़े हुए दामोदर जी और अपने गुरुदेव से कहा हे परमेश्वर हे गुरुदेव, आशा तो है नहीं बचने की, लेकिन परमात्मा मैंने इनका आपकी गणी में ही मां सुना रखी है कि मेरे गुरुजी ने उसका इतना लाभ दे दिया, उसका इतना लाभ दे दिया, उसको ऐसे मौत बचा दी, और आज मुझ नीच के कारण हो सकता है मेरे पर इतनी भक्ति ना बनी हो दाता आपकी जो आज हमारी मृत्यु टल सके। मुझ नीच के कारण दाता आपकी महिमा कम होगी, आज इस नीच ने आज बचा लो सारे जाज ने, और बाहर जाते ही बेसिक मृत्यु दे दियो दाता, कोई एतराज नहीं। न्यू कह के और अचेत हो गया, अचेत हो गया। तो इतने में क्या देखे है कि एकदम वो तूफान जो समुद्री तूफान था एकदम न्यू जाता दिखा जैसे बिल्कुल, और कति शांत हो गया समुद्र, हलचल नहीं रही ना, तो जहाज न्यू न्यू होने लग गया था और कति एकदम शांत है। सतगुरु जो चावे सो कर ही चौदह कोट दूध जम डर ही ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पाड़े। वो चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए ना, मौत थी सारे की। अब दामोदर सेठ जी उसमें आए और कति शांत सब खुशी मना रहे, और उसने ने कहे जय हो दामोदर सेठ की, जय हो साम दामोदर सेठ की, आज जान बचा दी। दामोदर सेठ बोला भाई नहीं, मेरे कबीर भगवान की जय बोलो, उनकी दया से रक्षा हुई है। उधर से क्या होता, कबीर जी सत्संग कर रहे थे एक भगत के घर में, सर्दियों के दिन थे। कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनका कुछ विश्वास होता है कुछ ना होता है, वह भी बैठे थे 50-60 भगत बैठे थे, परमात्मा सत्संग कर रहे थे आसन पर बैठ के। थोड़ी देर में क्या किया मालिक ने, ऐसे करकर ऐसे कर दिया, वो तंत्रयामी थे कि सामने वाले 2-3 मूर्ख बैठे इनका यकीन कोई ना, उनका छिट्टे लगे। तो और भक्तों का भी लगे, भक्तों ने पूछे गुरुदेव क्या हो गया आपको, आपका तो सारे केस भीज गए पानी में। परमात्मा कहने लगे कबीर जी के दामोदर सेठ का भाई जहाज डूबा था, उसको बचा के आया हूं, नहीं तो नाश हो गया था, उसने पुकारा मेरे को हृदय से। तो और ना किसी का जचिया बात, किसी का ना यकीन हुआ, और नो सोचे गुरु जी यहां बैठे पसीने आगे होंगे, शब्द शब्द गांव में थे सत्संग कर रहे थे हैं? और वैसे ही कह रहे थे। तो वो वहां से जहाज के लोग चलकर आए, 2-3 दिन 4 दिन लग गए, हफ्ता लग गया। उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा किसी के घर में, और वो सारे वही, क्योंकि उस समय थोड़ी सी संगत होती थी, जहां सत्संग होता था सारे आ जाया करते काशी शहर के, तो उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा। अब दामोदर सेठ जी सीधे कबीर जी की कुटिया पर गए, साथ में वो सेठ जितने और थे वह भी, कहने लगे हम भी आपके गुरु जी का नाम लेंगे, आज तो हमें पता लग गया वो परम शक्ति है। तो सारे 10-15-20 जितने जहाज में व्यापारी थे वह और दामोदर वहां पहुंच गए, कुटिया पर गए, कुटिया से पता चला झोपड़ी से कि वहां उनका सत्संग हो रहा है, वो वहां पहुंच गए। बाहर आकर जय जयकार कर, जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर भगवान की, जय हो कबीर जी की। अब जान बची लाखों पाए, परमात्मा को तो पता था, पूछा रहा देखना बाहर क्या शोर हो रहा है, सत्संग कर रहे थे। एक भक्त दामोदर जी को जाने था, उसने कहा जी दामोदर सेठ आ रहा है, उसके साथ 10-20 भक्त हैं, लाला जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। बोला भाई बुला ले आगे। सारे नौकर, हे महाराज आपने हमारी जीवन बचा दिया, हे महाराज हमारी जिंदगी, हमारे बालक बचा दिए, सारी जिंदगी आपके हाथों में, आपके द्वारा दिया हुआ जीवन है। परमात्मा बोले रे के बात भाई बताओ तो। वह राम कहानी बताई, तब उन बुद्ध वहां का कलाई जोड़े बैठे थे, न्यू गए थे, परमात्मा ने कहा था मैं उसका जहाज बचा गया हूं। तो सारे उन सेठों ने भी नाम ले लिया और परमात्मा का इस प्रकार ऐसे अपनी समर्थता का दिखा करके प्रभु ने 64 लाख शिष्यों को उपदेश दिया था आज से 600 वर्ष पहले। रे नल नील यतन कर हार, तब सत गुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सत गुरु से करी पुकार। जास तेरे काल की अपार, सिंधु पे सिला तेराने वाले। जास तेरे काल की अपार, सिंधु पे सिला तेराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। नंदन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के ओत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के ओत अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो हो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय, बरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्म दास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्म दास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। काटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करने वाणी, मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य शब्द प्राप्त करने वाले, धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले सत साईं।